अब्दुल्ला बिन उबई असल में अंदर से मुर्दा था। अच्छा, निकलते ही ना वहीं कह देते हमने नहीं जाना तो बात समझ भी आती, असल बात ये नहीं थी। असल क्या था? जान जाने का डर था। अल्लाह के रास्ते में बातें करना बहुत आसान होता है, जब कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं जिस बात के ऊपर और पाबंदियाँ लगती हैं तो वो तकाजे नहीं पूरे लिखे। जब दीन के तकाजे हमारे दुनिया के तकाजों से टकराने लगते हैं तो कोई बहाना बनता है, और हम उस वक्त भी अपने आप को 200% सच्चे कह रहे होते हैं, लेकिन हमारा उस वक्त बस एक ही मुकाम होता है, अल्लाह के हाँ महरूमीन। कल तक फरिश्ते जो हमारी नेकियां लेकर जाते थे आज किधर गई? कल तक आपके नामे अमाल में जो गुड डीड्स थी वो किधर गई? वो कहेंगे कोई बात नहीं, हम शौत पे नहीं जाते, हम जाके अबू सुफियान से मक्का में लड़ाते हैं। शौक से जाएं। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम से कटना और हटना, यही कैफियत इधर थी। हम तो कभी ना उनको मुनाफिक कहते अगर अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ना होता। अब हुआ क्या, वो निकल गए। अब ज़रा इस सिनेरियो को समझिएगा कि जब ये सब हुए, जंग हो गई, जंग में 70 लोग मारे भी गए। अब ये तो एक और उनको पुशअप मिल गया ना कि देखा कितने अक्लमंद हैं, हम पहले ही कहते थे नाकाम हैं ये लोग, बेकार हैं ये, अल्लाह के नबी जज्बाती बातें करते हैं, ये कोई होने वाली बात है, ये करने वाली बात है। तो घर घर में इन 300 लोगों ने ये बातें मशहूर कर दी कि देखा ना, हम तो तुम्हें पहले ही कहते थे। अच्छा, अगर ये हमारी तजवीज़ मान लेते तो मुसलमान जंग में ना मरते। अल्लाह ने इनके इन तबसरों के जवाब में यह आयत नाजिल कर दी कि वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता। अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले मुर्दा नहीं होते बल्कि ज़िंदा होते हैं, बल्कि वो अपने रब के यहाँ रिस्क पा रहे हैं। और इसमें एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या आपने सुना है, ग़ज़वे अहद में शहीद होने वाले एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है कि अब्दुल्ला के बेटे जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो अल्लाह के नबी के पास आए और देखा कि जाबिर रोए हुए हैं, उदास चेहरा। कहा कि जाबिर क्या हो गया? कहा अल्लाह के नबी बाप फौत हो गए, शहीद हो गए चले। बहुत सारी बहनें हैं और ये अकेले टेक केयरर थे बहनों के, और कर्ज़ भी बहुत छोड़ गए। तो मैं तो इस बात पर रो रहा हूँ कि बाप रहा नहीं, मेरी उम्र छोटी, बहनें भी हैं, कर्ज़ भी है। तो अल्लाह के नबी के लफ सुनिए, कहने लगे जाबिर क्या मैं तुझे वो बात ना बताऊं जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप से की है? जाबिर ने अर्ज़ किया क्यों नहीं? आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने किसी शख्स से बग़ैर हिजाब के बात नहीं फरमाई। लेकिन तेरे बाप से बग़ैर हिजाब के मुराद डायरेक्ट बराह रास्त गुफ्तगू फरमाई और कहा है ए मेरे बंदे जो चाहते हो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे बाप ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब मुझे दोबारा ज़िंदा फरमा ताकि मैं दोबारा तेरी राह में मारा जाऊँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये बात तो हमारी तरफ से पहले ही हो चुकी, यानी अब ये नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने किसी बंदे पे 2 ज़िंदगियाँ और 2 मौतें मुसल्लत नहीं की। मुराद ये कि मरने के बाद दोबारा नहीं होगा, वापसी नहीं होगी। तेरे बाप ने फिर अर्ज़ किया ऐ मेरे रब अच्छा तो मेरी तरफ़ से अहले दुनिया को मेरा ये पैगाम पहुंचा दे क्या कि मैं दोबारा ज़िंदा होकर फिर शहीद होने की ख्वाहिश करता हूँ, ये पहुंचा दे। ये इब्ने माजा की रिवायत है। तब अल्लाह ताला ने आयत उतारी कि वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातन, जो अल्लाह की राहों में कत्ल तक हो जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, वो तो अल्लाह के यहाँ रिस्क दिए जा रहे हैं। क्या पता चला कि जाबिर आप रो रहे हैं बाप के जाने पर, तो बाप वहाँ कितने खुश हैं। अच्छा, बस वह हम भी ये गलती कर देते हैं। हमारे प्यारे जिस्म दर्दों से भरे हुए, शुगर हुई हुई, कभी कभी जिस्म का कोर्स भी बेकार हो जाता है, कभी फालज भी हुआ होता है, 2, 3, 4, 5 साल से बेड रिडन होते हैं, अपनी तहारत का भी ख्याल नहीं कर पाता बंदा, अल्लाह उसको बड़ी इज्जत से अपने पास बुलाता है तो हम रो रहे होते हैं। सोच रहे दुनिया में बीमारियों तकलीफ़ों में पड़ा हुआ शख्स वो फारिग हुआ इस दुनिया से, वहाँ की दुनिया अच्छी होगी ना अगर मोमिन है, हम खुद गर्जी से रो रहे होते अम्मा चली गई, अब्बा चले गए। देखिए बंदा चाहता तो कभी नहीं, 100 साल के भी हो जाएंगे ना माँ बाप तो वो यही कहेंगे बच्चे के हाय अम्मा इतनी जल्दी क्यों चली गई। लेकिन इस वाक़े को और ख़ास तौर पर सूरह बकरा और आले इमरान की दोनों आयतों को जमा कीजिए तो चंद बातें जो हमें समझ आती हैं वो लिखिए। पहली बात है कि शहदा के अजसाम जिसम बॉडीज डेड बॉडीज मैयत कुछ भी कह लीजिए ये कब्र में होती है, लेकिन इनकी रूहें शहादत के फौरन बाद सीधी जन्नत में पहुंचा दी जाती हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे कुछ पूछ लूँ, हमने पीछे मोमिन की मौत पढ़ी ना, क्या होता है जब बंदे की रूह निकलती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? ذرا سا دہرائے میرے ساتھ. جنت کا کفن آتا ہے خوشبوؤں میں لپٹا ہوا, اس کو لپیٹتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے بھلا؟ آسمانوں کی طرف جاتی ہے روح, دروازے کھولے کھولے جاتی ہے نا. عام مومن کی روح واپس آ جاتی ہے, شہید کی نہیں آتی. کہتی میں نہیں جانا, میں بیٹھی ہوں. شہید کے لیے قبر کا عذاب حساب کتاب نہیں ہے. دعا کیجئے ایسی موت ہو میری بھی. آپ بھی اپنے لیے مانگیں, میں تو اپنے لیے یہی موت مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے تیرے رستے میں آخری دن تک کھڑا رہنا ہے. اور یہ شہادت الناس اور مجاہد فی سبیل اللہ, وقت کے دور کے تقاضوں میں اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لینے والوں کو یہ احساس ملتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑی بڑی خوشخبری ہیں حوروں کی اور سابقون الاولون کی. بعض نے کہا کہ حوروں کے وعدے ہے ہی صرف مجاہدین فی سبیل اللہ سے, اور مونچھوں پہ بال ڈالتے ہوئے وہ جو شاید فرض بھی نہ پورے پڑے وہ یہ باتیں کر کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ, میڈیوکر بنیں گے نا دین کے نام پہ. سمجھتے ہیں میڈیوکر, بیچ کے گلے ملے, کبھی دین کبھی دنیا, کبھی وقت پہ پڑھ لی نماز کبھی چھوڑ دی, کبھی قضا ہو گئی کبھی لمبی لمبی کئی رکھتے بھی پڑھ لی. حالات گھر کا ماحول سازگار ہوا تو سارا دن بھگوا لیجیے, اور ذرا سی مشکل آئی تو ہم کہتے ہیں سوری وی آر ناٹ اویلیبل, اور اس وقت سارے حقوق الباط ہمیں یاد آ جاتے ہیں. اور اسی طرح صحت ہے تو گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہیں, بیماری آئی تو پریشان. ہر بندے کی اللہ نے ایک وسعت رکھی ہے, اسی کے اندر رہ کے کام کرے. کچھ ضرورت نہیں ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی. لیکن یاد رکھیے شہادت کے بعد شہید کی روح براہ راست جنت میں رہتی ہے. میں نے آج سے کوئی یاد بھی نہیں کب یہ پہلی دفعہ یہ حدیث سنی, یہ آیتیں پڑھی جب میں نے اپنی پہلی قرآن کلاس میں پڑھی. اس دن مجھے قبر کا جو ایک خوف تھا نا, ہوا تھا, ہر ایک ہوتا ہے ابھی بھی ہے, یا جیسے ایک بند جگہ میں ہوں گے, ایک چھوٹی سی جگہ. یہ بات سن کے پتہ کیا لگ رہا ہے؟ آپ جا کے جسم دفنا دیں. دیکھیں نا کوڑ کباڑ ہے, گھر کا بیکار مال, جو بھی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں, آپ جا کر اس کو ٹریش کریں, ڈمپ کریں, اس کو اسکریپ بنا دیں. اس کو کیا ہونا ہے؟ اس جسم کو کچھ نہیں ہونا. روح میری تو جنت میں. آپ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ آئی ایم میں. آپ کہتے ہیں نا میری مرضی, میرے کپڑے, میرا گھر, میرا فون. یہ جو میں ہوں نا, میرا, مائی, آئی ہے, یہ روح ہے. یہ جسم ادھار کا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کرائے کا گھر لیتے ہیں کیونکہ میں نے رہنا. جس دن آپ کا ایگریمنٹ پورا ہو جاتا ہے یا اگلا آپ کو کہتا ہے خالی کر دیجئے, آپ اپنا سامان اٹھاتے ہیں تو چلتے ہیں. آپ کی چیزیں وہ ہیں جو بلانگنگز ہیں. تو روح جو ہے نا وہ آپ ہیں, آپ کی چیز ہے. یہ جسم کرائے کا جسم ہے. تو لہٰذا یہ بات پتہ چل گئی کہ شہید کی روح سیدھی جنت میں ہے. اور دوسری بات ہے کہ شہدا کی روحیں جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنا پسند ہی نہیں کرتی. اب وہ واقعہ جب بھی آپ کو اوپر سنایا, دو شہید بھائی کی برات اور اس کی روٹی کھانے آئیں گے. آپ اپنے اوپر لیجئے, آپ کو پی سی ہوٹل میں ہی ایک مستقل کمرہ مل گیا اور آپ وہاں 5 نہیں 10 سٹار ٹریٹمنٹ کے ساتھ رہ رہی ہیں, تو آپ کسی چھابڑی والے سے روٹی اور آلو چنے کھانے جائیں گی؟ سمجھنے کی بات ہے. تو لکھ لیجئے کہ شہدا کی روحوں کا جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے. اور اگر آپ قرآن سنت کے ساتھ شریعت کا مزاج بھی ذرا سا دیکھنا چاہیں نا, تو چند باتیں اور بھی سمجھ آتی ہیں. لکھیے گا جس سے آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ شہدا کی برزخی زندگی اس دنیا جیسی زندگی نہیں. پہلی بات دیکھیے, اب آپ ذرا سا شعور کو کھولیں. اگر شہید اور بقول لوگوں کے اولیاء اور صلحاء زندہ ہیں, زندہ ہے, ایسے ہی زندہ جیسے یہ اس وقت میں اور آپ زندہ ہیں, تو ان کے مرنے کے بعد پھر ان کی بیویوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ دیکھیے نا, آپ سب جانتے ہیں والمحصنات من النساء, نکاح شدہ عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں آ نہیں سکتی. سب کو پتہ نا, جب تک وہ شوہر کی زوجیت میں ہے. طلاق کی صورت میں الگ ہو گئے یا بیوگی آ گئی تو اس کے بعد کی بات الگ ہے. تو کیا شہدا کی بیویاں دوسرے مردوں کے نکاح میں آ سکتی ہیں؟ آ سکتی ہیں نا, کیونکہ وہ اس دنیا کے اعتبار سے فوت ہو گئے. پھر دوسری بات دیکھیے, کیا شہید اولیاء اور صلحاء ولی اللہ جو بھی ہیں, کیا ان کی میراث تقسیم کی جاتی ہے جس عام لوگوں کی جاتی ہے؟ کی جاتی ہے, یس کی جاتی ہے. اگر وہ زندہ ہیں سب تو پھر ان کی وراثت اور ان کی میراث کیوں تقسیم ہوئی؟ تیسری بات نوٹ کیجئے گا, شہید کی, ولی کی, ایک نیک بندے کی مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے؟ پڑھائی جاتی ہے نا, جیسے عام لوگوں کی. तो क्या एक जिंदा बंदे की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं? चौथी बात नोट कीजिएगा, शहीद को, वली को, साले शख्स को मरने के बाद क्या उसी तरह कब्र में दफन किया जाता है जैसे आम लोगों को किया जाता है? तो क्या आप एक जिंदा बंदे को कब्र में डाल रहे हैं? क्या ये चार दलाइल काफ़ी नहीं है इस बात के लिए कि शहीद जिंदा है लेकिन उसकी ज़िंदगी का कुछ और परसेप्शन है? मैं आपको थोड़ी सी इस पर एक मिसाल दूं, अल्लाह ने भी दिल में डाली। देखिए, आप साइंस की ज़ुबान में पूछें तो कौन कौन जिंदा है, किसको कहते हैं ज़िंदगी? मतलब इस वक्त आप मैं जिंदा है ना, जानवर, बिल्लियाँ, जी नफ्स कहते हैं, लेकिन साइंस कहती है पौधे भी जिंदा हैं क्योंकि वो सांस लेते हैं, वो कार्बन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अब आप कहें, मिसाल है कि आपके इधर पॉट में कोई फ्लावर रखा हुआ है या आपके सामने फ्लावर्स हैं, मैं आपसे कहती हूँ इस कमरे में कितने ज़िंदा लोग हैं, तो आप अपने सब को काउंट करके कहते हैं हम 20 लोग हैं। कोई कहता नहीं वो देखे 20 वो भी हैं। वो साइंस की ज़ुबान में कह रहे हैं वो फूल पत्ते भी जिंदा है क्योंकि वो आज ऐसे दो चार दिन बाद ये मुरझा जाएंगे। साइंस की ज़ुबान में बात ठीक है लेकिन आपकी मेरी ज़ुबान में नहीं। मैं आपसे कहती हूँ हाय आप मुझे अकेली इस कमरे में छोड़ के जा रही हैं, आप कहते नहीं ये 10 फूल भी छोड़ के जा रहे हैं, आप इनके साथ दिल लगा लें, वो जिंदा है। लेकिन क्या आप वो मेरे से बातें कर सकते हैं? बस बात समझ आ गई है, सीधी सी बात है। तो ऐसी बातों को जो वाज़े क्लियर, जिसका आपके क्रिस्टल क्लियर मौक़फ़ हो, उसको ऐसे ही गैर मुबहम करना, गैर वाज़े कर देना, ये दुरुस्त नहीं होता। ये जो लोग बेचारे हैं भोले भाले सीधे ना, उनको ऐसी चीज़ों में डालते हैं और वो सर धुन धुन के आते हैं कि जो बात आज समझ आ गई वो तो पहले किसी में भी नहीं थी। तो एंड अप क्या हुआ, खुलासा करवा देती हूँ आपको, कि शहीद जिंदा हैं लेकिन वो ज़िंदगी इस दुनिया की ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनकी रूहें जन्नत में हैं या इलीहीद में हैं। तीसरी बात है कि वहाँ से कोई इनको वापस आने नहीं देगा, ना वो आना चाहेंगे। और सबसे अहम बात जो सारे शिर्क के दरवाज़े बंद करती है कि फिर ऐसे लोगों की कब्रों पे जाकर मुरादें मांगना, दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना, क्या ये जायज़ होगा? जायज़ तो नहीं है। अगर आप देखिए वो सुन लें तो आपको जवाब नहीं दे सकते, तो कोई अगर किसी मुराकबे में चला जाए, कोई कहता है मुझे कशफ होता है, क्योंकि ये सारी बेकार बातें हैं। सीधी सी बात रखिए कि ये दुआ कीजिए कि हमें दीन को बिल्कुल सीधा सादा समझने की तौफीक अता फरमाए, जितनी कि अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए रखी है। जिनका सवाल है कि क्या फौजी और सिपाही ही शहीद होते हैं या हम कुरान पढ़ने वाले भी हैं, वैसे तो इसमें बड़ा लंबा इंतज़ार है। सूरह फुरकान, वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। इमाम बुखारी उस आयत पे कहते हैं कि ये जहाद कबीर अहलुल कुरान है, कुरान वाले जहाद कबीर कर रहे हैं। बिही से मुराद वहाँ कुरान है ना। मुख्तसर सा जवाब ये ले लीजिए, शहादत का आखिरी दर्जा यह है कि खून बहे, जान जाए, और पहला दर्जा यह कि पसीना बहे, जो आपका बह रहा है दर्जे। और जो इल्म हासिल करते हुए मरता है वो शहीद है, घर के बिस्तर पर बंदा मरता है लेकिन वो शहीद है, और कभी कभी मैदान जंग में मरता है और मुनाफिक है। देखिए, इनका बहुत अच्छा सवाल है कि मुल्क के लिए लड़ना, जैसे फ़ौजी हैं, सिपाही हैं, उसकी नीयत से कोई लड़ता है तो क्या वो भी शहीद है या वाकई इस्लाम के नाम पे? मिसाल है, एक अमेरिकन सोल्जर है, वो अमेरिका के दिफा के लिए लड़ता है। एक पाकिस्तानी सोल्जर है, वो पाकिस्तान के दिफा के लिए लड़ता है। अब वो तो चूँकि गैर मुस्लिम है, इवन वो मुस्लिम भी हो सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने अमेरिकन आर्मी सिर्फ इसलिए ना ज्वाइन की कि कल आप अगर हमें किसी मुस्लिम मुल्क पे हमले पे ले जाएंगे तो हम क्या करें। और आपको पता है, नॉर्वे में भी था, अभी मुझे लगा है कि पिछले साल कुछ चेंजेस आए, हर बच्चे को, यंग टीनेजर, लड़के लड़की को एक सर्टन एज पर कुछ महीने जाकर आर्मी की उनकी लेनी पड़ती हैं, बहुत बड़ा फितना होता है उस वक्त भी। तो लेकिन यह है कि अब कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम मुल्क के दिफा में खड़ा है, या एक पाकिस्तानी या एक सऊदी कह लीजिए, कोई भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ा है, तो क्या वो शहीद है कि नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे एक शख्स आया, कहने लगा अल्लाह के नबी अल्लाह के लिए लड़ते हैं, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह, लेकिन दिल में ये भी ख्वाहिश होती है कि तारीफ हो जाए, और कभी कभी ये भी ख्वाहिश होती है कि जाएँगे लड़ेंगे लेकिन कुछ माल गनीमत भी मिल जाए, तो क्या ये हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह? तो आपने क्या कहा? नो, मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह सिर्फ वो शख्स है जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुमान है वैसे कि पाकिस्तान आर्मी को जब फ़ौज में भर्ती किया जाता है तो उनको ये सारे सबक पढ़ाए जाते हैं। अब आप इस सोच से करें कि पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं तो हम लड़ें, अच्छा अमल है, लिखिएगा ज़रा। देखिए कि आज पाकिस्तानी की मिसाल दे लेते हैं, आप में से अक्सर उन्हीं से हैं, या इंडिया का भी ऐसे ही कुछ सेटअप होगा। आर्मी अलग होती है, इंडियन आर्मी अलग है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले अलग हैं। मदरसों में जो कुरान पढ़ते हैं वो अलग है। हर मुल्क का एक पूरा एक सेट है ना, जो सही रियल इस्लामिक गवर्नमेंट होगी वहाँ फौज नाम का अलग से कोई इशू नहीं होगा। आज अगर आप इस्लाम का सही पैकेज ले लें तो वहाँ आपके लिए आर्मी, फौजी, उनके सारे इंतजामात, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्यों भला? एक शेर है बड़ा मशहूर है, एक जुमला उसका सिर्फ बोल देती हूँ। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो था वही ठीक है ना। मदीना पहली मुस्लिम स्टेट थी। अल्लाह के नबी ने मदीना में आने के बाद जो काम किए, मवाखाते मदीना हुई, मीसाक़े मदीना हुआ, महाजर और अंसारी को जो भाई बनाया गया, या ज्यूस के साथ और लोकल लोगों के साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए थे ना, अल्लाह के नबी ने कोई ऐसा शोबा नहीं क्रिएट किया कि अच्छा तुम में से कौन मदीना में मुस्लिम आर्मी की सूरत में जाओगे। कहाँ से आते थे ये लोग? असहाबे सुफा। असहाबे सुफा जिन्होंने अपने आप को कुरान सीखने और अल्लाह के नबी की बात सीखने के लिए डिवोट कर दिया था। सारा साल वो आपके फुल टाइम स्टूडेंट्स होते थे। जिस दिन किसी जगह जाकर हमला करने की जरूरत पड़ती या कहीं दिफा करना पड़ता, अल्लाह के नबी आकर एक ऐलान लगाते, कौन तैयार है आज, उधर से जियाले निकलते। असहाबे कुरान ही असल में किसी मुल्क की फौज होते हैं, वहां से रूह मिलती है। या आप कुरान पढ़ते हैं तो दिल नहीं कर रहा कि हम भी कुछ करें? तो कल अल्लाह ना करे कि कोई मसला हो जाए तो आप ही लोग जाएंगे इस्लाम के दिफा में, फ़ायदा क्या होगा? फिर गर्दनें नहीं कटती। देखिए ये इस्लाम का बड़ा प्यारा टॉपिक है, बुक रखी है इसी सीरीज़ की, किताबो जिहाद पढ़े, ये सारे जो बातें मैं कह रही हूँ ना आपको इसमें समझ आएंगे। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन ही ख़त्म हो गया कि जिहाद है कि नहीं। जिसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, जिसके बच्चे के दिल में अल्लाह के नबी सल्लम की मोहब्बत है। वाक़या सुना होगा आपने कि दो बच्चे जो थे अब्दुलरहमान बिन औफ के पास आए बदर के मैदान में। चचा अबू जहल कौन है? कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? का हमारी माँ बताती है कि वो मक्का में नबी सल्लम को गाली देता था। अब बच्चे बाद में पैदा हुए तो आज हम घर से सोच के आए कि जो शख्स नबी को गाली दे आज हम उससे निपटेंगे। इतने इतने बच्चे अर्ली टीन कह रहे। मैं भी उनसे बातें ही कर रहा था तो दूर से मुझे नजर आया कि अबू जाहल सर पे शुतुरमुर्ग का पर लगाए हुए, इर्द गिर्द उसके लोग तलवारें डालकर उसकी हिफाजत कर रहे थे। मैंने कहा वो रहा तुम्हारा शिकार? मुअव्वज़ और माज़ अफरा के बेटे। कहते हैं वो बच्चे वहां से मेरी बात सुनकर ऐसे उछले जैसे मैं आपको अपनी जुबान में कहूँ कि अदरक की डल्ली कुंडी डंडे में से उछलती है, मूसल की धार की तरह निकले और जाकर उधर पल बढ़। ये बच्चे थे आर्मी। इस्लाम ने कभी अलग से आर्मी की तरतीब नहीं की। ये वो लोग होते हैं जिनका दिल अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से भरा है। अदरवाइज पता क्या होगा? रातों को इंडियन गाने सुनेंगे, इंडियन फिल्में देखेंगे, शराबें चलेंगी पार्टीज में, और जो फौज की खराबियां आपने कभी सुनी होंगी वो सारी होंगी। अगले दिन जाकर उसी बॉर्डर पे खड़े होकर उनको इस पाकिस्तान का, इंडिया का दिफा करना होगा। बस समझ गया ना, ये है आज के दौर का ड्रॉबैक। जैसे हमने दीन का और दुनिया का एक अलग मेयार बना लिया ना, ये जिहाद बाहर के लोग नहीं करते। आप पांच उंगली में एक उंगली ढीली करें, ऐसा ऐसा चारों की ग्रिप लूज होते हुए एक भी रह जाएगी नहीं, और आप एक पकड़े तो आप कहेंगे लाओ कर ही रही हूँ ना, लाओ मैं खाना बना रही हूँ, लाओ लाओ रोटी भी मैं बनाती हूँ, तुम बर्तन लगाओ। ये एनर्जी है, ये है शहादत का काम, ये सारे नहीं कर सकेंगे। नाजुक अंदाम, सहूलतों का बंदा, और इतना एक कीड़ा शर का आ जाए, शक का आ जाए, डाउट, ख्वाहिशात, शहवात और शुबहात, ये दो लफ्ज लिख लें जिंदगी में। बहुत सारे लोग भग टूट भाग रहे होते हैं लेकिन शहवत रास्ते में आती है। मैं जॉब कर लूँ, मुझे पैसे मिल जाएं, मैं भी तो अपनी दुनिया को एंजॉय करूँ, ये शहवत है। और दूसरा जब बंदा इसमें नहीं आता, नहीं नहीं मुझे नहीं दुनिया से कोई सरोकार, मैं बस खुश, तो फिर वो डाउट डालता है। और कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं डालता, अल्लाह की कसम, ये चाय का कप मेरे पास रखा है, मुझे शक पड़ जाए ना कि इसमें एक मच्छर का पर गिर के बस निकल गया तो मेरा दिल ही नहीं करेगा। हालांकि हो सकता है कि वो मक्खी की कोई किस्म हुई तो जायज़ है, कोई बुरी नहीं, मैं नहीं पीऊँगी। शक क्यों? पहला जुमला है सूरह बकरा का, ज़ालिकल किताब ला रईब फ़ी। आज आप इस वक्त इधर इसलिए हैं कि आपको शक नहीं था कि यहाँ क्लास होगी कि नहीं होगी, यकीन था ये होगी और आपको यहाँ आने से फ़ायदा होगा। तो इस यकीन के साथ चलेंगे, अल्लाह बहुत आगे ले जाएगा। दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे दिलों को शक से पाक कर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कितनी खूबसूरत दुआ थी, अल्लाह मारी नल हक का हक कन वर जुक ना इतबाह हो, अल्लाह मेरे लिए हक को हक करके दिखा और फिर मुझे इसकी इत्तबा की भी तौफीक दे। वारिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, और बातिल को बातिल करके दिखा और इसे रुकने की भी तौफीक दे। यह जा रहे हैं तो खुशकिस्मत समझें अपने आप को। जिस दिन आपको अपने ऊपर रहम आ गया, शक पड़ गया, नहीं आएंगे कल, कभी यहाँ से उठ के चले जाएंगे। देखिए ये लव शहीद तो मैं कहती हूँ कि दिल के अंदर खून में ऐसे दौड़ रहा है जैसे, वही बात है कि जिस्म में खून और पानी है। ये पैगाम आज नहीं पता हम लोगों को। जितना ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के करीब होते जाएंगे, ये फिर वो गवाहियाँ देने का और शहादत अलन्नास से उठते उठते शहीद होने का शौक़ और जज्बा बढ़ता जाएगा। वरना कुरान बराए कुरान, तर्जमा बराए तर्जमा, तजवीद बराए तजवीद और ग्रामर बराए ग्रामर, आप इल्म के पहाड़ बन जाते हैं। ज़रा ख्वाहिश नहीं होती जहाद की, जिधर जहाँ आप घर से पढ़ते रहें सुनते रहें, एक क्लिक पे आपकी क्लास है। मैं उनको नहीं कह रही कि जो आज का लॉकडाउन की वजह से, या हमारी तो मुस्तकिल क्लासेस ही ऑनलाइन है। हमारे बड़े बड़े एडमिन, अल्लाह उनको सब्र के पहाड़ बना दे, ये ऑनलाइन क्लासेस के तोहफे हैं, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ भी है इसमें एक आप लोग भी हैं माशाल्लाह, जो ऑन साइड की दौड़ धूप है, पूछे तो सही है सुबह आके क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो क्या अल्लाह आपकी कदर नहीं करेगा? आप तो ये 2-2.5 घंटे मेरे गिनते हैं, अल्लाह इनका आधा पौना घंटा पहले और 1 घंटा बाद वाला भी गिनता है। ये ज़रूरत है इस वक्त करने की। मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ, शायद आज भी फ़ायदा दे। जो कौम कलम पकड़ लेती है ना, उनको तलवारें नहीं पकड़नी पड़ती। जब कलम से दावत करेंगे आप, दीन की दावत गैर मुस्लिमों तक नशर व इशाअत की करेंगे, तो उनके दिल से कुफर ख़त्म हो जाएगा। तो जब कुफर ख़त्म हुआ तो फ़ैखवानुकुम फ़िद्दीन, क्या कहा सूरह तौबा में अल्लाह ने, वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। इस्लाम की दुश्मनी काफिर से नहीं, कुफर से। आज दुनिया में जितने भी जुल्म हो रहे हैं, क्या वो सिर्फ इस्लाम के नाम पे हो रहे हैं? ज़मीनों पे, तेलों पे, ऑयल पे और सोने चांदी के ज़खीरों पे, ऐसे ही है ना। इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी ने जितनी भी जंगें लड़ी वो किस लिए थी भला? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलव करिहल काफिरून। तो शहीद बहुत बड़ी बात है। देखिए बहुत सारी चीज़ों पे शहादत का अजर है। पहली बात तो याद रखिए ना, जैसे ताउन की बीमारी, पेट का मरज, जल गया, डूब गया, अपनी जान बचाते हुए, डायरिया, पेट के दर्द बीमारी। आप एक बात लिख लें जो पीछे भी आई थी सीरीज़ में, बेसिक्स ठीक हो, अकीदा ठीक हो, हराम ना हो बीच में, तौहीद है। जब बुनियादी अकायद ठीक है तो अल्लाह को क्या मुश्किल है, अल्लाह ताला उसको शहीद का अजर देगा, जब कह दिया अल्लाह के नबी ने। लेकिन अल्लाह के हक ही नहीं पूरे। ये बातें सारी हमने की थी इसी सीरीज़ में, मन रब्बू का पे, मन रसूलू का, मा दीनू का। अल्लाह के नबी का मुकाम ही नहीं पता, आपकी सुन्नत का नहीं पता, बिदत और सुन्नत का फ़र्क ही नहीं पता। तो ऐसा बंदा इन सारी खुशखबरियों से निकल जाता है, पेट में हराम के लुकमे हैं, कबायर हैं। तो ये इसीलिए दुआ करते हैं, करनी भी चाहिए हमें, कि अल्लाह हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हम पहले दीन के बेसिक्स समझें। अल्लाह के नबी का ग़ुलाम था, मैदान में शहीद हो रहा है, लोगों ने कहा देखो देखो जन्नती है, आपने कहा नहीं मैं देख रहा हूँ। इसने माले गनीमत में से एक चादर चुराई थी, वो इस वक्त इसके ऊपर आग की बनी हुई है। आप क्या कहेंगे? अब वो तो शहीद है, हम तो पता नहीं क्या कुछ उसके साथ सबके लख के लगाते। लेकिन मैं आप नहीं कह सकते आज, क्योंकि वो ज़ुबान नबूवत थी, उनको नज़र आ रहा था कि चादर आग की बनी है, मुझे आपको नहीं दिखता। और एक और शख्स है इतने ज़ख्मी, इधर जिस्म चूर चूर है, लोगों ने कहा देखे देखे शहीद, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं ये जहन्नमी है। थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि वो अपनी दर्द को बर्दाश्त ना करने की वजह से करीब पड़ा एक खंजर लेकर ख़ुदकुशी करके मर गया। तो देखिए अल्लाह को गलती तो नहीं लगती, अपने ऊपर हमेशा अच्छा ही गुमान रखिएगा, लेकिन आपकी मेरी असल जो है ना वो खुल जाती है।